लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि भारी संख्या में विस्थापितों और शरणार्थियों को पनाह देने वाले राष्ट्रों को उनके प्रयासों में समर्थन मिले। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। यह इसलिए हुआ कि वे प्रभु पर भरोसा रखें, ईश्वर के महान कार्य नहीं भुलाएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पूर्वजों जैसे नहीं बने। वह एक हठीली और विद्रोही पीढ़ी थी, एक ऐसी पीढ़ी जिसका हृदय दृढ़ नहीं, जिसका मन ईश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं। इफ्रायम के अनुभवी धनुर्धारी पुत्रों ने युद्ध के दिन पीठ दिखाई, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के विधान का पालन नहीं किया था, उन्होंने उसके नियमों पर चलना स्वीकार नहीं किया। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 78वें भजन के 7 से लेकर 10 तक के पद, जिनकी व्याख्या हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत की थी। 78वें भजन का उपदेशक पूर्वजों से सुनी बातें भक्त समुदाय के समक्ष रख रहा था। वह उन्हें प्रभु ईश्वर के महान कार्यों के बारे में बता रहा था। मिस्र की दास्ता से ईश प्रजा को मिली मुक्ति की याद दिलाकर वह बता रहा था कि ईश्वर केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं अपितु मनुष्य के उद्धारकर्ता भी हैं। 78वें भजन में अतीत की घटनाओं का स्मरण दिलाकर उपदेशक चेतावनी भी देता है कि मनुष्य को किस तरह का आचरण करना चाहिए। अतीत का वह साक्षी है जो सच्चे मार्ग पर चलने हेतु लोगों का मार्गदर्शन करता है, उन्हें चेतावनी देता है कि कौन सा रास्ता वे अपनाएं और कौन से रास्ते का बहिष्कार करें। वह इस तथ्य के प्रति चेतना भी जागृत कराता है कि मनुष्य के जीवन में संपादित समस्त घटनाएं और समस्त बातों का स्रोत प्रभु ईश्वर हैं। ईश्वर के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। अस्तु मनुष्य ईश आदेशों का पालन करते हुए जीवन यापन करे, जैसा कि प्राचीन व्यवस्थान के मीका के ग्रंथ के 6वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है, वह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। श्रोताओ, इस बात की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि स्तोत्र ग्रंथ के भजन प्राचीन व्यवस्थान के युग में रचे गए थे। इन भजनों को दाऊद के अतिरिक्त कई लोगों ने लिखे थे और बाइबल पंडितों का मानना है कि 78वां भजन इसराइल के विख्यात और सर्वाधिक विशाल कुल यानी कि इफ्रायम के पतन के बाद मसीह के जन्म से 720 वर्ष पूर्व नबी ईसाया द्वारा रचा गया था। यह भजन एक लंबी कहानी है जिसमें राजा दाऊद के काल तक ईश प्रजा का इतिहास निहित है। यह भजन दर्शाता है कि ईश्वर भले हैं और अपनी प्रजा के प्रति वे सदैव दयालु रहे हैं। हालांकि प्रजा ईश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं रही, वह एक हठीली और विद्रोही पीढ़ी थी, एक ऐसी पीढ़ी जिसका हृदय दृढ़ नहीं था, जिसका मन ईश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं रहा। भजन के 10वें पद के अनुसार उन्होंने ईश्वर के विधान का पालन नहीं किया था, उन्होंने उसके नियमों पर चलना स्वीकार नहीं किया था, और फिर उन्होंने उसके महान कार्य, उसके दिखाए हुए चमत्कार भुला दिए थे। श्रोताओ, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब मनुष्य ने ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया, तब तब वह अपने पतन की ओर आगे बढ़ा। आज हमारे अपने युग में भी यही हो रहा है। स्वार्थ और अहंकार के कारण मनुष्य ईश नियमों पर चलने से इनकार कर रहा है और नियमों पर चलने वालों को प्रताड़ित कर रहा है। वह जीवन की समस्त अच्छाइयों की इच्छा तो करता है, किंतु उन्हें पा लेने के बाद अच्छाइयों के स्रोत को ही भूल जाता है, वह ईश्वर को भूल जाता है। 78वां भजन हमें ईश्वर के कार्यों पर मनन चिंतन के लिए आमंत्रित करता है और हमसे आग्रह करता है कि हम प्रभु पर भरोसा रखें। आपत्ति आने पर उन्हें पुकारने से कभी भी हिचकिचाएं नहीं, उनके महान कार्यों को याद करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहें तथा अपने पूर्वजों जैसे हठीले और विद्रोही नहीं बने। आगे 78वें भजन के 11 से लेकर 17 तक के पदों में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मिस्र देश तानिस के मैदान में उनके पूर्वजों को चमत्कार दिखाया था। उसने समुद्र विभाजित कर उन्हें पार कराया, उसने जल को बांध की तरह खड़ा कर दिया, वह उन्हें दिन में बादल द्वारा और हर रात को अग्नि के प्रकाश द्वारा ले चलता था। उसने मरुभूमि में चट्टाने फोड़कर मानो अगाध गर्त में से उन्हें जल पिलाया, उसने चट्टान में से जल धाराएं निकाली और पानी को नदियों की तरह बहाया, फिर भी वे उसके विरुद्ध पाप करते रहे और मरुभूमि में सर्वोच्च ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। श्रोताओ, इन पदों में भी भजनकार ईश्वर के कार्यों का बखान करना जारी रखता है। वह इजरायली लोगों के इतिहास के पन्नों को उलटते हुए उन्हें स्मरण दिलाता है कि जब वे मिस्र से प्रतिज्ञात देश की ओर निकले थे, तब यदि ईश्वर अपने चमत्कार नहीं दिखाते तो इजरायली जाति प्रतिज्ञात देश तक कभी भी पहुंच नहीं पाती। वस्तुतः उक्त पदों में प्राचीन व्यवस्थान के निर्गमन ग्रंथ की कहानी निहित है, जिसमें मिस्र से पार गमन की जटिल यात्रा और संकटों को पार करने में ईश्वर से मिली मदद का विवरण मिलता है। समुद्र विभाजन के बारे में इस ग्रंथ के 14वें अध्याय के 21वें पद में हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भागों में बंटकर सूख गया। श्रोताओ, जिस प्रकार प्रभु ईश्वर ने उस युग में अपनी प्रजा इज़राइल की रक्षा की थी, उनका मार्गदर्शन किया था, उसी प्रकार आज भी वे हमारी रक्षा को तैयार रहते हैं। आज भी वे हमें संकटों के सागर से बचाते हैं। जरूरत है केवल उन पर भरोसा रखने की, उनके नियमों के अनुकूल जीवन यापन करने की और आपत्ति के क्षण में उन्हें पुकारने की।
नाथ करी